हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब तो आकांक्षा के जहन में एक एक करके सारी चीजें ऊपर नीचे होने लगी थीं। कुछ वक्त पहले जो उसे खुशी मिली थी, झलक के जाने के बाद सिद्धार्थ का उसके साथ नरम व्यवहार, सिद्धार्थ का उसे तवज्जो देना, पार्टी ऑफिस से फोन आना, पार्टी में बुलाया जाना, हर चीज अब उसे खोखली लगने लगी थी। उसकी दुनिया धीरे धीरे हिलने लगी थी, क्योंकि अचानक से रणविजय ने आकर उनका पूरा का पूरा प्लान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। आकांक्षा खुद को रोक नहीं पाई और वो तुरंत रणविजय के सामने झुक गई थी और उसके पैर पकड़ लिए थे। जानबूझकर आकांक्षा ने अपने शरीर के कुछ आकर्षक अंगों को रणविजय के सामने उजागर छोड़ दिया था, ताकि रणविजय उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन रणविजय ने केवल एक नज़र भर उसे देखकर अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया था। तभी आकांक्षा जल्दी से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोली थी, देखो रणविजय प्लीज़, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं यहाँ आकर सिद्धार्थ को खोने का रिस्क नहीं ले सकती। मैं सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती हूँ और उसके प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो, तुम जो कहोगी मैं करूँगी। क्या शर्त है तुम्हारी, बोलो ना क्या शर्त है, प्लीज़ प्लीज़। जैसे ही आकांक्षा ने ये कहा, अचानक रणविजय उसके पास झुका था। उसने आकांक्षा के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर की ओर उठाया। फिर वो उसके चेहरे के पास एक उंगली घुमाते हुए उसकी गर्दन के पास से अपने हाथों को फेरने लगा और बहुत ही धीमी लेकिन ठंडी आवाज़ में बोला था, सिद्धार्थ खुराना की बीवी बनने के बाद तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, और वो भी सिद्धार्थ खुराना की आँखों के सामने। ये सुनकर आकांक्षा को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रणविजय ऐसी मांग रखेगा। वो जल्दी से आंखों में आंसू भरकर बोली थी, तुम कैसी बातें कर रहे हो, सिद्धार्थ खुराना तो इस वक्त मेरी जान ले लेगा। तुम जानते हो ना वो कैसा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तभी रणविजय हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला था, क्यों क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारने में क्या दिक्कत है। वैसे भी तुम सिद्धार्थ को पाना चाहती हो, उससे शादी करना चाहती हो, कर लो, जो करना है उसके साथ कर लो, सुहागरात भी उसके साथ मना लो। मैं तो बस कुछ दिनों बाद एक रात मांग रहा हूँ तुमसे, सिद्धार्थ के सामने। इतना तो चाह सकता हूँ तुमसे, है ना, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती, फिर उसने तंज कसते हुए कहा था। और वैसे भी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम कोई सती सावित्री हो, भूल गई हो अभय राणा को जिसके साथ तुम पूरे 3 दिनों तक सोई थी। जैसे ही रणविजय ने ये कहा, आकांक्षा की आंखें फैल गई थीं, मानो अभी बाहर निकल आएंगी। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन हो चुका था, उसके पैरों और शरीर में कपकपी छूट चुकी थी। कांपते हुए होठों से वो बोली थी, अभय, तुम अभय के बारे में कैसे जानते हो, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला। तभी रणविजय ने उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहा था, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभय राणा मेरा दोस्त था, तुम जानती हो उसे। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन समझ गया था कि तुम कौन हो, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी सगाई सिद्धार्थ से हो चुकी है तो मैं काफ़ी खुश हुआ था। उसने आगे कहा, मुझे लगा था कि अभय और तुम्हारी बातों को सिद्धार्थ के सामने लाकर उसका दिल तोड़ दूंगा, लेकिन झलक बीच में आ गई। झलक के लिए सिद्धार्थ के दिल में जो प्यार मैंने देखा उससे मैं हैरान रह गया, लेकिन तुमने अपनी चालें चलकर झलक को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। रणविजय की आवाज़ और सख्त हो गई थी, अब तुम्हें मेरा मकसद पूरा करना होगा। मैं सिर्फ सिद्धार्थ को तड़पाना चाहता हूँ, उसे दर्द में देखना चाहता हूँ, और हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक रात यूं ही नहीं गुजारूंगा। उस रात के बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, इतना ही नहीं तुम्हें बेस्ट मॉडल भी बनाऊंगा, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा था, ताकि अगर कभी सिद्धार्थ खुराना तुम्हें छोड़ने की सोचे भी तो वो मर जाएगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी जान सलामत रहेगी इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन मैं सिद्धार्थ खुराना को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, उसकी आंखों में वो दर्द देखना चाहता हूँ जब वो देखेगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ है। रणविजय ने आगे कहा, मैं चाहता तो ये सब झलक के साथ भी कर सकता था, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ झलक को सिद्धार्थ से अलग करवाने का था, क्योंकि वो झलक से प्यार करता था। वो तुमसे प्यार नहीं करता, बस झलक की शक्ल की वजह से वो तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, अंत में उसने कहा था। फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारी उससे शादी भी करवा दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब तुम सोच लो, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो तुम्हें सिद्धार्थ खुराना का नाम, फेम, दौलत सब कुछ मिलेगा, और वैसे भी कौन सा तुम सिद्धार्थ खुराना से इतना दिल से प्यार करती हो कि उसका दिल टूटने पर तुम्हें कोई अफसोस होगा। आई होप तुम बहुत जल्द मुझे अपना फैसला बता दोगी, और डोंट वरी, तुम्हारी और सिद्धार्थ की शादी की तैयारियां मैं खुद करवाऊंगा। ये बोलकर रणविजय उठा और अचानक झुककर आकांक्षा के गालों को चूम लिया, फिर सीधा वहां से बाहर निकल गया। वहीं आकांक्षा तो एकदम सोफे पर पत्थर की तरह धंस चुकी थी, ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर से किसी ने सारी ताकत निचोड़ ली हो। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, सफेद हो गया था और इस वक्त उसकी आंखें भर आई थीं। वहीं दूसरी ओर अकेडमी में झलक और अनामिका काफी हद तक थक चुकी थीं, लेकिन क्योंकि आज उनका पहला दिन था तो उन्होंने वहां रुकने से मना कर दिया और अपने घर वापस आ गईं। घर आकर अनामिका मुंह फुलाकर बैठ गई थी, क्योंकि इस वक्त उसका मूड काफी ज्यादा खराब था। हालांकि दादाजी ने उन्हें कहा भी था कि एक तो दिन के लिए वे लोग वहीं रुक जाएं और वहां के माहौल को अच्छी तरह समझ लें, लेकिन अनामिका का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था, इसीलिए उसका वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था और वे वापस घर आ गईं। वहीं झलक सीधा अपने कमरे में चली गई थी। झलक के दिल में एक तूफान था जिसे उसने समेटकर अपने भीतर कहीं बंद कर लिया था, क्योंकि इस वक्त वो अपने दिल की हालत किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि पहले खुद को और अपनी फैमिली को पूरी तरह से एडजस्ट कर ले। वहीं दादाजी अब समझ चुके थे कि उनकी प्यारी पोतियां उनसे कितनी ज्यादा नाराज हैं। वो अनामिका के पास आए, उनके सिर पर शेफ की टोपी रखी हुई थी और हाथों में नूडल से भरी एक प्लेट थी, जिसे लेकर वो अनामिका के सामने बैठ गए, लेकिन अनामिका ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। ये देखकर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वहीं आरव जी की आंखें हल्की हल्की नम हो गई थीं, क्योंकि उनकी जिंदगी के 24 साल पूरी तरह अंधकार में डूबे रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों का बचपन पूरी तरह मिस कर दिया था। दादाजी ने ही शुरू से अनामिका के छोटे छोटे नखरे, उसकी हर जिद, सब कुछ उठाया था, और आज भी वो अच्छी तरह जानते थे कि अनामिका उनसे नाराज है, इसीलिए वो पहले से ही अपने हाथों से अनामिका के लिए नूडल्स बनाकर लाए थे, क्योंकि अनामिका को अपने दादाजी के हाथों से बने नूडल्स बेहद पसंद थे। तभी झलक भी फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। वो हल्की सी, लगभग ना दिखने वाली मुस्कुराहट के साथ अनामिका और दादाजी को देख रही थी। उसी वक्त स्नेहा जी भी वहां आ गई। उन्होंने दादाजी को देखकर कहा, वैसे अंकल जी, आपने ऐसा क्या कह दिया बेटी को कि वो इतनी ज्यादा नाराज हो गई है? इस पर दादाजी ने स्नेहा जी की ओर देखते हुए कहा, बेटा जी, अब आपको क्या बताऊं, आप ही बताइए। मैंने इन दोनों बच्चों को अच्छे से समझाया था कि अकेडमी में जाकर इन्हें मेरा नाम नहीं लेना है, लेकिन वहां भी ये घर जैसा ही बर्ताव कर रही थी। दादाजी ने आगे कहा, अब तुम ही बताओ, अगर सबके सामने पहले ही दिन इनका रिश्ता खुल जाता तो सब इन्हें नॉर्मल स्टूडेंट की जगह कुछ अलग तरह से ट्रीट करने लगते, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इन्हें परिवार के नाम और सहारे के बिना ही कुछ सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा।
जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अनामिका के मुंह से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, आप मुझसे इस तरह बातें कैसे कर सकते हैं? मैंने सिर्फ आपका हाथ ही तो पकड़ा था। मैंने उन्हें दादाजी भी नहीं कहा था, मैंने खुद को रोक लिया था। फिर उन्हें क्या जरूरत थी सबके सामने मुझ पर चिल्लाने की? अब मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी। तभी दादाजी ने अपने कान पकड़ते हुए कहा,